ज्ञानतिमिरन्धश्रज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो च गणपते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्तनमस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण। तो आज का जो विषय है चैतन्य लीला का, किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जो संकीर्तन है उसका आरंभ करते हैं, तो आज हमारा आखिरी सत्र है गौरांग महाप्रभु के चरित्र का वर्णन करने का। श्रील वृंदावन दास ठाकुर जब चैतन्य भागवत में गौर लीला का वर्णन करते हैं तो उसके शुरुआत में कहते हैं, पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार जिवाय स्फुरक गौर चंद्र अवतार। के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करना बहुत कठिन है और उनका गुणगान करने के लिए वो कहते हैं कि मैं बारंबार फिर से डिवोटीज की शरण ग्रहण करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनके संग में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ, ताकि मेरी जो जीवा है वो गौरांग महाप्रभु के चरित्र का वर्णन कर सके। कल हमने सुना था कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फाइनली उनके जो विद्यार्थी हैं उनको जो पढ़ाने का कार्य है वो बंद कर रहे हैं। तो ये सारी जो लीलाएं हमने ली है एक सीक्वेंस है चैतन्य महाप्रभु के लाइफ का। तो महाप्रभु की लीला चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि समुद्र गंभीर, समुद्र के समान बहुत विशाल है और बहुत डीप है, तो उनको समझना एक सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए असंभव है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। तो कल श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली अपने स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं कि अभी मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा नहीं, और वो विद्यार्थी भी कहते हैं कि हमारा भी जो पढ़ना है वो अभी अंतिम है, हम भी किसी और शिक्षक के पास नहीं जाएंगे और इसके बाद भी हम पढ़ेंगे नहीं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के प्रति वो प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि जो भी आपसे हमने सुना है वो जन्म जन्मांतर तक हमारे हृदय में बना रहे, और वो विद्यार्थी और चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे के गले में गला डालकर रोने लगते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की ये जो लीलाएं हैं जो कानों को मन को और हृदय को आनंद प्रदान करने वाली है, लेकिन वास्तव में सरलता से गौर लीला में हमारा मन या हमारा हृदय आकृष्ट नहीं होता। वो बहुत कहते बहुत जन्मों के भाग्य के उपरांत कोई व्यक्ति वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के जो कार्यकलाप है उनके प्रति आकृष्ट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन बालकों को अभी पढ़ाना बंद किया और उनको कहा कि आप क्या करो, आप सब कृष्ण की शरण ग्रहण करो और आपका जो मुख है कृष्ण नाम से सदैव भरा रहे, और जिसे भी आप मिलोगे उसे कृष्ण के बारे में चर्चा करो उसके साथ और कृष्ण के बारे में सुनो। तो ये सब चीजें जब चैतन्य महाप्रभु ने कही तो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु फिर एक विशेष कार्य का आरंभ करने वाले थे। बल्कि चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख कार्य क्या था? संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो युग धर्म का प्रवर्तन करने हेतु चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए थे। अलग अलग अवतार अलग अलग कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार होते हैं जो इस जगत में अवतरित होते हैं और विशेष कार्य करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे संकीर्तन प्रदान करने के लिए। जो अधम से अधम जीव है, जो भगवान को सरलता से समझ नहीं सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, ऐसे जीवों को कृष्ण भक्ति देने हेतु चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन को इंट्रोड्यूस करते हैं, संकीर्तन प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु गया गए थे पौष मास में, और पौष मास के अंत में वापस चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप आते हैं। और जैसे ही माघ मास की शुरुआत होती है, उस समय चैतन्य महाप्रभु क्या करते वास्तव में? अपना संकीर्तन आरंभ करते हैं नवद्वीप में। तो ये जो संकीर्तन है, सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया था आपने इन स्टूडेंट्स के साथ, किसके साथ? इन सारे विद्यार्थी छात्रों के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उसी समय उन छात्रों को कहते हैं, पढ़िलाऊ सुनिलाऊ जत दिन धरे कृष्ण कीर्तन कर परिपूर्ण करे। उन्होंने कहा जितना अभी पढ़ चुके हो गया, अभी जी भर के क्या करो? कृष्ण का कीर्तन करो। किसने कहा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने उन स्टूडेंट्स या छात्रों को कहा, शिष्यगण बलेन के मन संकीर्तन आपने सिखाए न प्रभु श्री सचिनंदन। तो उन सारे विद्यार्थियों ने पूछा, ये संकीर्तन क्या चीज है, ये संकीर्तन कैसे करना है? और वास्तव में संकीर्तन का मतलब है भगवान का नाम रूप गुण लीला और उनके भक्तों का जो जिसको कहते परिकर वैशिष्ट्य, उसका उच्चारण करना आपस में अधिक संख्या में आकर, इसको वास्तव में संकीर्तन कहते हैं। इन चीजों का कीर्तन करना, कीर्तन कई चीजों का है, नाम कीर्तन है, रूप कीर्तन है, गुण कीर्तन है, लीला कीर्तन है, भक्तों का जो चरित्र गाथा है उनका कीर्तन है। तो इस प्रकार से जब इन चीजों का कीर्तन अपने जीवा से हम उच्चारण करते हैं, अकेले नहीं अधिक भक्तों के संग में आकर, उसे संकीर्तन कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को छात्रगण कहते हैं, आप तो कह रहे हो जी भर के संकीर्तन करो, लेकिन हमें पता नहीं ये संकीर्तन वस्तु क्या है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो सर्वोत्कृष्ट देन है, चैतन्य महाप्रभु की जो सबसे बड़ी भेंट कोई चीज है तो वह संकीर्तन है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। ये प्रेम धन चैतन्य महाप्रभु ये संकीर्तन कहां से लाए हैं? गोलोक वृंदावन से। और ऐसा वैसा संकीर्तन नहीं है, बाकी युगों में भगवान का नाम हमेशा है, भगवान के नामों का कीर्तन हमेशा है, लेकिन इस युग की खासियत क्या है? इस युग का जो नाम है वो सर्वसाधारण नाम नहीं है, इस युग का जो कीर्तन है वो सर्वसाधारण कीर्तन नहीं है, इस युग का संकीर्तन है वो सर्वसाधारण संकीर्तन नहीं है। इसके आगे एक विशेष शब्द लगा हुआ है और वो क्या है? प्रेम। क्या है? प्रेम। इसलिए कहते हैं ये प्रेम नाम संकीर्तन है। बाकी युगों में जो नाम कीर्तन आदि है वो आपको वैकुंठ और बाकी मुक्ति या प्रदान कर सकता है, लेकिन भगवान के प्रति अहेतु की प्रेम नहीं प्रदान कर सकता। लेकिन इस युग में चैतन्य महाप्रभु ये जो हरे नाम प्रदान करते हैं, इसकी यही खासियत है कि इस नाम का कोई उच्चारण करता है निश्चल बिल्कुल मिश्रण भौतिक मिश्रण से रहे तो वो जो नाम है उसको वास्तव में प्रेम प्रदान कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं? कौन से अवतार है? प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, कृष्ण कौन से है? लीला पुरुषोत्तम। और भगवान राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा, लीला और प्रेम, तो वास्तव में सब में जो सर्वोत्कृष्ट है वो प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु है। तो जैसे इन छात्रों ने पूछा कि कैसे संकीर्तन करना है, तो चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते हैं। शिष्य गण बलेन के मन संकीर्तन, आपने शिखाए न प्रभु श्री सचिनंदन। तो सचिनंदन गौर हरि स्वयं सिखाने लगे हैं कि कीर्तन कैसे करना है। पर वास्तव में सिखाने का मतलब है गुरु का कार्य करना, आचार्य का कार्य करना। आचार्य मीन्स आचरति इति आचार्य, अपने आचरण से दूसरों को सिखाता है वो आचार्य है। इसलिए अद्वैताचार्य का नाम अद्वैताचार्य क्यों है? क्योंकि वो वास्तव में अद्वैताचार्य सारे जीवों को अपने आचरण से कृष्ण की जो शुद्ध सेवा है उसकी शिक्षा देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को भी आचार्य बोला गया है। तो चैतन्य महाप्रभु को आचार्य इसलिए भी कहा गया है क्योंकि उन्होंने हर वस्तु की शिक्षा एक भक्त के लिए आवश्यक है वो अपने आचरण से सिखाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कैसे करना है, तो महाप्रभु गाने लगे। क्या गाया महाप्रभु ने? हरे कृष्णा जोर से, हरे कृष्ण मंत्र नहीं गाया। क्या गाया चैतन्य महाप्रभु ने? हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, महाप्रभु पहली बार नवद्वीप में बाहर कीर्तन कर रहे थे अपने इन छात्रों के संग में, और महाप्रभु ने सिखाया। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, दिशा दिखाया प्रभु हाथे ताली दिया, आपने कीर्तन करे शिष्य गण लिया। दिशा दिखाई कैसे करना है कीर्तन, हाथों से ताली, करताल। करताल मीन्स हाथ, हाथों का इस्तेमाल करके ताल बजाना, कर मीन्स हाथ। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उन सब शिष्यों को कीर्तन करना सिखाया। आपने कीर्तन नाथ करे न कीर्तन, चौदी के बेड़िया गाया सब शिष्य गण। चैतन्य महाप्रभु का एक नाथ क्या है? कीर्तन नाथ। कौन से नाथ? जैसे आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहां अलार नाथ है ना, तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। ऐसे हमारे चैतन्य देव कीर्तन नाथ है, कीर्तन के नाथ है, कीर्तन के स्वामी है। ऐसे महाप्रभु जब नाचने लगे कीर्तन में, तो सारे उनके छात्र शिष्यगण भी उनके इर्द गिर्द नाचने लगे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य संकीर्तन के पिता है। संकीर्तन जिनके द्वारा जन्म लिया है, जिनके माध्यम से संकीर्तन का पितरो कमलाय ताक्षो विश्वंबरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। तो वो कहते हैं ऐसे महाप्रभु चैतन्य को मैं वंदन, उनकी वंदना करता हूं जो करुणा के अवतार है और संकीर्तन आंदोलन के असली पिता है। कमलायताक्ष उनकी आंखें कमल के समान है, जिनका नाम विश्वंबर है और द्विजवरो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, युग धर्म पालो युग धर्म का पालन करने वाले हैं। तो ऐसे महाप्रभु नाचने लगे इस कीर्तन में और खुद ही अपने ही नामों का कीर्तन करके नाम रस का पान कर रहे थे। और महाप्रभु जोर जोर से उन सारे विद्यार्थियों को कहते थे और जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो सारे विद्यार्थी शिष्यगण इस कीर्तन को बहुत ऊंचे स्वर में गाते थे। तो संकीर्तन का मतलब यह भी है कि सबे मेली सबके साथ मिलकर उच्च स्वर में कृष्ण के नामों का कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। तो नवद्वीप में पहले अभी ऐसा कभी कीर्तन हुआ नहीं था। तो जैसे ही इनके तुमुल उच्च ध्वनि ऐसा कीर्तन कोलाहल जब हो उठा नवद्वीप में, तो सारे नवद्वीप वासियों ने सोचा ये आवाज कहां से आ रही है। तो सारे नवद्वीप वासी सची माता के जो घर है उसके आसपास दौड़ने लगे, अलग अलग भक्त भी आने लगे और सबको इतना आश्चर्य हुआ, इतना आनंद हुआ, बूढ़े बच्चे माताएं प्रभु जी सब लोग दौड़ रहे थे ऐसे कीर्तन को देखने के लिए और हर एक व्यक्ति आनंदित हो रहा था। और चैतन्य महाप्रभु मत्त हाथी के समान उस कीर्तन के बीच में नाच रहे थे और ऐसा दुर्लभ दृश्य था। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति धन्य हो रहा था कि हमारे आंखों नेत्र होना हमारे लिए आज सफल है कि चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और कीर्तन हम देख पाए। इस प्रकार से महाप्रभु इस संकीर्तन की शुरुआत करते हैं और जिसने भी उस कीर्तन को देखा उनका जो हृदय है पूर्ण रूपेण मेल्ट हो गया, पिघल गया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण का नाम इतना मधुर है, राधा रानी कहती है हे सखी केवा सुनाईला कृष्ण नाम। हे सखी अपनी जो फ्रेंड है उसको कहती है श्रीमती राधा रानी कि हे सखी आपने क्यों मुझे ये कृष्ण का नाम सुनाया। श्याम नामे कतो मधु आछे गो, वो कहती है कि ये श्याम का नाम कितनी स्वीटनेस है, कितना मधु है। तो वो कहते कि जैसे ये नाम मेरे कानों से प्रवेश करता है हृदय में मुझे विचलित कर देता है। आकुल कराए मोर प्राण, मेरा हृदय कृष्ण के लिए भागने लगता है। तो ये कृष्ण नाम इतना मधुर है जिसके लिए रूप गोस्वामी कहते कि हे कृष्णा आपके इस मधुर नाम का आस्वादन करने के लिए मुझे हजारों हजारों लाखों लाखों जीवा चाहिए और जब इस जीवाओं से उच्चारण होगा तो इतना मधुर है कि करोड़ों करोड़ों काम चाहिए उसको सुनने के लिए। इसलिए हर आचार्य ये मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कृष्ण नाम के स्वीटनेस को मैं अनुभव करूं। लेकिन वही कृष्ण नाम जब कोई भक्त उच्चारण करता है तो और मधुर हो जाता है। और आप सोचो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं वही कृष्ण नाम स्वयं कृष्ण जब उच्चारण करते हैं तो उसके स्वीटनेस की कोई सीमा नहीं रहती, सारी सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है वो इन कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे थे, इतनी मधुरता बढ़ गई। और फिर चैतन्य महाप्रभु इस कीर्तन में जब बाह्य अवस्था में आए फिर भी वो अपने जीवा से कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण, क्या कह रहे हैं जोर से। और जैसे कृष्ण कृष्ण कह रहे थे और अपने आप को रोक नहीं पाए, जितने भी उनके शिष्यगण थे उनके उनको आलिंगन कर रहे थे, उनके गले में अपना गला डालकर चैतन्य महाप्रभु क्रंदन करने लगे। तो इस प्रकार से नदिया में एक कीर्तन की क्या आ गई, बाढ़ आ गई। आनिया प्रेमेरा वन्या चौदी के बेड़ा है। लोचनदास ठाकुर एक गीत में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में एक कीर्तन की बाढ़ लेके आए और इस बाढ़ में नदिया के सारे जीवों को डुबो दिया। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम करे बारे दान, शिखाय शरणागति भक तेरा प्राण। ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ है कृष्ण प्रेम वो सबको दे दिया और सारे जीवों को भगवान के प्रति शरणागति, जो डिवोटीज का लाइफ है भगवान के प्रति शरणागत होना, ये सबको सिखाया। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नवदीप में प्रथम संकीर्तन आरंभ करते हैं और ये देखकर नवदीप के जो भक्त थे उनका दुख दूर हो गया, क्योंकि कुछ ही डिवोटीज थे नवदीप में और अधिकतर 95% से अधिक डिवोटीज नहीं थे, पाषंड थे, नास्तिक थे। वो इन भक्तों की निंदा करते थे, इनको तंग करते थे और भक्त लोग बहुत दुखी थे हृदय में कि कब ये लोग कृष्ण नाम का उच्चारण करेंगे, ये लोग अपना जीवन किस प्रकार से विफल कर रहे हैं। तो अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीनिवास, श्रीवास आदि ये सब प्रार्थना करते थे भगवान से कि आप अवतारित हो जाइए, हमें कृष्ण नाम सुनने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी नवदीप की स्थिति थी, कभी कभी एक नाम सुनाई मिलता था। कोई व्यक्ति नदी में स्नान करने जाता है तो गलती से कृष्ण पुंडरीक गोविंद ऐसे नाम लेता था, बस वो कभी तो गलती से सुनाई देता था। तो ऐसे महाप्रभु ने जब ये कीर्तन आरंभ किया तो सब नवदीप के भक्तों को आनंद हुआ और फिर चैतन्य महाप्रभु के जितने भी छात्र थे इन्होंने परमानेंटली अभी पढ़ाई को तिलांजलि दी थी। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते कि यही आगे चल के सारे छात्र चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्त बने, सन्यासी बने, ब्रह्मचारी बने, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार सारे विश्व में किया। तो ऐसे जब हुआ तो अद्वैताचार्य के पास फिर सारे भक्त लोग जाते हैं। जब ये संकीर्तन जब शुरू हो गया और भक्तों ने देखा कि कृष्ण प्रेम के लक्षण चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हो गए हैं और वो सब लोग फिर अद्वैताचार्य के पास जाते हैं उनको बताने के लिए, और अद्वैताचार्य वास्तव में भगवत भक्ति के प्रतीक है। अद्वैताचार्य बहुत शक्तिशाली पर्सनैलिटी है क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु को अवतरित करने का एक कारण कौन है, अद्वैताचार्य है। अद्वैताचार्य ने देखा कि सारे जीवों को मैं देख रहा हूं, ये सारा संसार विषय भोगों में लिप्त है, कोई भी कृष्ण भक्ति के रस में आनंद नहीं ले रहा है, तो बहुत दुखी हो गए। ऐसे दुखी हृदय था उनका। तो एक दिन वो एक बुक पढ़ रहे थे, गौतमीय शास्त्र, तंत्र शास्त्र, उसमें उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, उन्होंने तो जिसमें वर्णन आया था तुलसी दल मात्रेण जलश चुनुकेन वा विक्रीनेते स्वात्मान भक्त्योभ्यो भक्त वत्सला, कि भगवान इतने एक भक्त के वश में हो जाते हैं यदि कोई डिवोटी भगवान को थोड़ा सा तुलसी दल अर्पित करता है गंगा जल के साथ, तो भगवान अपने आप को क्या करते हैं, उस भक्त को बेच देते हैं, उसके हवाले हो जाते हैं। जब अद्वैताचार्य ने पढ़ा तो अद्वैताचार्य ने तुरंत एप्लीकेशन शुरू किया, दूसरे दिन से उन्होंने पूजा आरंभ कर दी, शालिग्राम शिला को जल और शालिग्राम शिला को तुलसी अर्पित करना और भगवान को प्रार्थना करना। तो जिनके कारण भगवान से चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो गए थे। और जब अद्वैताचार्य के पास ये भक्त लोग गए जिन्होंने कहा कि ये जो निमाई है, निमाई पंडित अभी महान भक्त हो गए हैं, उन्होंने ये संकीर्तन शुरू किया है, तो अद्वैताचार्य ने कहा कि मैं जानता हूं ये निमाई कौन है। अद्वैताचार्य कहते हैं कि ये जो निमाई है विश्वंभर है, कहते मैं जानता हूं कि यही है वास्तव में सारे जगत का उद्धारक। अद्वैताचार्य कहते कल रात को जब मैं सो रहा था भगवत गीता पढ़ते पढ़ते और भगवत गीता का एक श्लोक में जब पढ़ रहा था तो उस एक श्लोक का भक्ति युक्त अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने भगवत गीता को बंद किया और मैंने सोचा आज मुझे यह अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। हाँ, हम तो सोचते अच्छा है कि समझ में ही ना आ जाए कुछ, समझ में आए तो फिर मुश्किल होगी, शरणागति स्वीकार करनी पड़ेगी। तो अद्वैत आचार्य ने कहा कि मैं प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगा, हम भूखा ही सो जाऊंगा। तो अद्वैत आचार्य सो गए भूखे, और फिर उनके स्वप्न में वो कहते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, उस स्वप्न में एक युवा एक व्यक्ति आया जो बहुत रूपवान परम कारुणिक और सुमधुर कंठ से मुझे उठा के बोलने लगा, अद्वैत आचार्य उठो उठो, मैं तुम्हें भगवद गीता के श्लोक का अर्थ समझाता हूं। तो अद्वैत आचार्य को भगवद गीता के श्लोक का अर्थ समझाया और कहा कि सारे दुखों को छोड़ो, एकमात्र मेरी पूजा करो, और मेरी पूजा करने मात्र से तुम्हारी जो सारी अभिलाषा है वो पूर्ति होगी। और तुम क्या करो, ये उपवास आदि छोड़कर कृष्ण कृष्ण हाँ कहा करो, क्या कहो जोर से। तो अद्वैत आचार्य को जो कहा कृष्ण कृष्ण कहो, फिर महाप्रभु कहते हैं क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है इस जगत में, अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए कृष्ण के नामों का उच्चारण तुमने किया है जिसके कारण मैं जगत में अवतरित हो गया हो, इसलिए हे अद्वैत आचार्य तुम्हारे कृपा के कारण इस संसार में हर नगर नगर में और हर गांव गांव में क्या होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। और ऐसा ब्रह्मा को भी दुर्लभ प्रेम मैं सबको प्रदान करूंगा, और आप नवदेव के सारे भक्त इसका अनुभव करोगे, कहा श्रीवास ठाकुर के आंगन में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और वो कहते कि मैं जब उठा तो मैंने देखा वो दिव्य पुरुष कोई और नहीं था, वो कौन था, निमाय पंडित विश्वंबर चैतन्य महाप्रभु, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये विश्वरूप के जो छोटा भाई है विश्वंबर या निमाय पंडित, ये जब से बचपन से मैंने उसको देखा है, मेरा जो चित्त है मेरा जो मन है सदैव उसकी ओर आकृष्ट होता है, क्यों, क्योंकि वो सारे गुणों की खान है। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य उन भक्तों को कहते कि जल्द ही बहुत अद्भुत दिन आने वाले हैं जिसके द्वारा हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति होगी और हम सब भक्त नवदीप के परम सुख की अनुभूति करेंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के बारे में धीरे धीरे अभी सब जगह प्रकाशित हो रहा था कि चैतन्य निमाय महान वैष्णव बन गए हैं, और अद्वैत आचार्य को पता चला था कि ये साक्षात कौन है, कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण के अलावा कोई और नहीं है, ये राधा कृष्ण का मिलित विग्रह है चैतन्य महाप्रभु, क्या है, राधा कृष्ण का मिलित विग्रह है। तो ऐसे संकीर्तन को आरंभ किया था चैतन्य महाप्रभु ने, तब से जब से संकीर्तन आरंभ किया तब से उनका हृदय और अधिक विनम्रता के भाव से बढ़ गया, और वो जैसे ही गंगा स्नान करने जाया करते थे और भक्तों से मुलाकात उनकी होती थी, तुरंत भक्तों को देखकर प्रणाम करते थे, उनके चरणों की धूलि लेते थे, और भक्त लोग कहते थे नहीं नहीं निमाय तुम तो इतने कृष्ण भक्ति के भाव के लक्षण प्रकट कर रहे हो, ये उचित नहीं है, आप हमें प्रणाम करते हो। तो लेकिन भक्तों का जो हृदय है आनंद से भर गया था, क्यों, क्योंकि महाप्रभु के हृदय में या महाप्रभु को इतने बड़े भक्त के रूप में उन्होंने देखा। तो मतलब हमें आनंदित होना चाहिए जब किसी भक्त का हृदय भगवान की भावना से क्या होता है, भर उठता है, या दूसरा भक्त कृष्ण भावना में उन्नति कर रहा है तो हमें बहुत अधिक आनंदित होना चाहिए। कुंती महारानी कहती है भगवान की कृपा प्राप्त करना बहुत सरल है, यदि कोई व्यक्ति देखता है कि कुछ डिवोटी इस कृष्ण के नाम रूप गुण लीलों को सुनना चर्चा करने में आनंद ले रहे हैं, ऐसे भक्तों को देखकर जो आनंदित होता है उस पर कौन कृपा करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं, केवल इतना ही काफी है। कृष्ण की कृपा को अपनी ओर आकृष्ट करना कि दूसरे कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण रूप लीला आदि सेवा में आनंदित है या यंगेज है और उनको देखकर हम आनंदित होते हैं तो कृष्ण हम पर कृपा का वर्षाव करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब भी जाते थे आवेश में आकर भक्तों को प्रणाम उनके चरण आदि पकड़ना तो कोई समझ नहीं पा रहा था, बल्कि भगवान की जो लीला शक्ति है श्रीवास ठाकुर आदि जैसे भक्त भी चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है उनके स्वरूप को समझ नहीं पा रहे थे, बल्कि श्रीवास ठाकुर कभी कभी चैतन्य महाप्रभु को आशीर्वाद देते थे शुरुआत के समय में। वो जैसे चरण पकड़ते थे निमाई पंडित श्रीवास ठाकुर कहते थे, वो कहा करते थे, अरे तुम्हारा जो मन है कृष्ण में लगा रहे, तुम क्यों ये सब पढ़ाई आदि कर रहे हो, कृष्ण भजले से बाप सब सत्य है ना भजले कृष्ण विद्या की छुना है। उन्होंने कहते कृष्ण का भजन करना ही परम सत्य है, कृष्ण का भजन जीवन में हम नहीं करते तो हमारा जीवन एक पशु के भांति है। इसलिए महाप्रभु को कहते हैं कि आप क्या करो, कृष्ण के चरणों में दृढ़ अनुराग को जागृत करो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस आचरण से सिखाते हैं कि वास्तव में भगवान की कृपा को लाभ करना है तो उनके भक्तों की सेवा करना परम आवश्यक है, उनको आदर और सम्मान देना ये परम आवश्यक है। दासे सेविले कृष्ण अनुग्रह करे, उनके दासों की सेवा करने से कृष्ण की कृपा हमें सरलता से मिलती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, नदी में जाते थे तो भक्तों के कपड़े जब वो भक्त धोकर रखते तो उसको निचोड़ के सुखा कर आ जाते थे और फिर देखते थे किसी को फूलों की आवश्यकता है गंगा पूजा के लिए, दौड़ के फूल तोड़ के लाकर उसको देते थे, या फिर किसी को गायत्री जप करने के लिए कुछ कुशाग्रास आवश्यक है गंगा की मिट्टी आदि आवश्यक है तो वो लाकर उसको देते थे। तो इतना दीन भाव इतनी सेवा की भावना भक्तों के प्रति चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित ने प्रदर्शित की कि भक्तों का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने कहा ये निमाय को हुआ क्या है, निमाय जो इतना उदंड था हमें इतना तंग करता था अभी उसकी विनम्रता की कोई सीमा नहीं है, उसकी भक्तों की सेवा करने की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से महाप्रभु का इस दैन्य और सेवा भाव को देखकर भक्त लोग लज्जित हो जाते थे और वो कहते थे नहीं नहीं निमाय आप हम योग्य नहीं है आपकी सेवा करने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपकी सेवा नहीं करूंगा तो भक्त वत्सल भगवान कैसे मेरे ऊपर कृपा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अत्यधिक सुखी होते हैं आनंदित होते हैं जब देखते हैं कि एक व्यक्ति भगवान के महान भक्तों की सेवा में क्या है नियुक्त है। तो अपने आचरण से भक्त सेवा का जो महिमा है या महात्म्य है इसको स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये करते हैं सेवा करते हैं। तो ये भक्त उनको आशीर्वाद दिया करते थे, भक्त कहते थे भज कृष्ण स्मर कृष्ण सुन कृष्ण नाम कृष्ण हो सबर जीवन धन प्राण। हे निमाय कृष्ण का ही भजन करो, कृष्ण का ही स्मरण करो, कृष्ण का ही नाम लो और कृष्ण ही आपके जीवन के धन और प्राण बन जाए। बोलह बोलह कृष्ण हो कृष्ण दास तुम्हारे हृदय हो कृष्ण प्रकाश। निरंतर कृष्ण कृष्ण करते रहो और ऐसे कृष्ण कृष्ण कहने से आपके हृदय में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाए। कृष्ण महानाही हर स्मरुक तुमार तुमा है ते दुख जाओ अमा सबाकार। वो कहते थे कि आपको कृष्ण के अलावा कोई चीज स्मरण नहीं होनी चाहिए निमाय, और जब आपके कारण ही हम सबका दुख खत्म हो सकता है। और वो कहते कि निमाय हम चाहते हैं कि आप क्या करो, निरंतर कृष्ण कीर्तन के रस में डूब जाओ, क्योंकि आप डूबोगे तो हम सबको भी लेकर क्या करोगे कृष्ण रस में डूबोगे या डुबाओगे। इस प्रकार से सारे भक्त उनको आशीर्वाद देते थे और उन भक्तों का आशीर्वाद चैतन्य महाप्रभु अपने सर में लेते थे और फिर अपने कार्य में चले जाते थे। इस प्रकार से महाप्रभु अत्यधिक विनम्र और दयनीय भाव प्रकट कर रहे थे। और फिर जब घर आते हैं, घर आकर हमेशा जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण की भावना में मग्न रहते थे, लेकिन एक चीज का दुख उनके हृदय में था। क्या था? क्योंकि भक्त लोग बहुत दुखी थे, किस चीज से? नास्तिकों से और पाषाण लोगों से, निंदकों से। तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा आ गया। एक दिन घर में आकर उनको भगवान की भावना का भाव वो प्रकट करते हैं और इतने क्रोधित हो जाते हैं, और कोई नास्तिक या पाषाणी दिखाई दे तो उसके पीछे भागते थे, किस चीज के लिए? उसको मारने के लिए। तो जैसे कोई देखता था नास्तिक, वो कहते हैं निमाई के पास नहीं जाना, ये हमें मार मार के हमारी हालत खराब कर देगा। तो सब लोग दूर से भाग जाते थे। और फिर इतना गुस्सा उनको आता था निमाई को, घर में पूरे दिन कहा करते थे मुई से ही, मतलब मैं वही हूं। कौन हूं मैं? कृष्ण हूं। और कृष्ण किस लिए आते हैं? यदा यदा ही धर्मशः ग्लानिर् भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मशः तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु घर में कृष्ण की भावना में पागल हो उठते थे, कभी नाचते, कभी हंसते, कभी मूर्छित हो जाते हैं, तो सची माता और विष्णु प्रिया स्तब्ध हो जाती, और कभी कभी तो इतने गुस्से हो जाते हैं कि विष्णु प्रिया के पीछे उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते, और वो बेचारे विष्णु प्रिया एक जगह जाकर छुप जाते, और उनका भी जो लोग आते थे वो भी डरे हुए होते थे। सची माता को लगा मेरा पुत्र कब ठीक होगा। तो जितने भी लोग उनको विजिट करने आते थे कहते थे कि आपके बेटे को वात की बीमारी हो गई है, वायु रोग हो गया है, इसकी कुछ दवाई करो। बेस्ट चीज क्या है? इसकी टांगे, इसको बांध के रखो घर में, ये सबको तंग करते रहता है, बाहर मत छोड़ो। कोई कहता था कि इसको शिव घृत, शिव जो घी है वो इसको पिलाओ। कोई कहता था कि इसको दिन रात एक विशेष तेल है, तेल का मालिश करो और उससे स्नान कराओ। कोई कहता था कि इसको बहुत नारियल खिलाओ, तो नारियल खाने से इसकी ये जो बीमारी है पागलपन की, ये ठीक हो जाएगी। तो ये सब सुनकर सची माता बहुत दुखी थी। तो एक बार श्रीवास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए ऐसे आते घूमते हुए सची माता के घर में, जैसे श्रीवास ठाकुर ने उनके घर में प्रवेश किया तो चैतन्य महाप्रभु उस समय दोनों हाथ जोड़कर तुलसी की प्रदक्षिणा कर रहे थे, और तुलसी को प्रदक्षिणा करते करते महाप्रभु चैतन्य ने श्रीवास ठाकुर को उनके घर के आंगन में प्रवेश करते हुए देखा। और इनकी एक विशेषता थी चैतन्य महाप्रभु की, भक्तों को देखने मात्र से आनंदित हो जाते थे और रो पड़ते थे, कभी कभी मूर्छित हो जाते थे, क्योंकि भक्तों को देखने से किसका स्मरण होता था उन्हें? कृष्ण का। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि हम तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने से कोई देखता भी है इस तिलक को तो उसे कृष्ण का स्मरण होता है, और जब हम खुद लगाते हैं तो हमें भी ये स्मरण रहता है कि मैं किसका सेवक हूं? कृष्ण का सेवक हूं। तो इस प्रकार से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा उनको, श्रीवास ठाकुर को देखकर ही कृष्ण के स्मरण में इतने पागल हो गए कि वहां मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, और गिरते ही थोड़ी देर के बाद उनकी चेतना वापस आती है। श्रीवास ठाकुर को पूछते हैं कि हे श्रीवास, आप बताओ, ये सारे लोग मुझे पागल ही कह रहे हैं, आप मुझे सही में बता सकते हो कि मेरी ये जो स्थिति है ये क्या है? क्या ये उचित है मैं जो जिस भावना को प्रकट कर रहा हूं? तो जब चैतन्य श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से देखा, तो चैतन्य महाप्रभु को इस अवस्था में देखते ही श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हे श्रीवास, महाभक्ति योग देखी तुम्हारा शरीर है, श्री कृष्ण का अनुग्रह है न तुम्हारे। उन्होंने कहा तुम्हारे हृदय में कोई और बीमारी नजर नहीं आ रही है, तुम्हारे शरीर में तो कृष्ण के प्रति महाभक्ति योग, इस पर में हर चीज महा है, महाप्रभो और क्या है महाप्रसाद और महाराज और महामंत्र और यहां कौन सा भक्ति योग है महाभक्ति योग। भक्ति योग तो सुना है तो महाप्रभु के अंदर महाभक्ति योगी हो सकता है ऐसा वैसा भक्ति योग नहीं। तो महाप्रभु के अंदर ये भक्ति योग की भावना जब देखी बच्चों को प्लीज बाहर ले जाइए। तो जब चैतन्य महाप्रभु के हृदय में इस भावना को जब श्रीवास ठाकुर ने देखा उन्होंने कहा कि तुम्हारे हृदय में तो भक्ति योग है कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम के लक्षण है। और ऐसे सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर का आलिंगन किया। उन्होंने कहा श्रीवास यदि तुम कुछ और बोलते हैं तो मैं अभी दौड़ के जाता और गंगा में अपना शरीर त्याग देता मुझसे सहन नहीं होता कि आप इसके अलावा कुछ और बोलते हैं। क्योंकि वो जानते थे कि श्रीवास ठाकुर कृष्ण के महान भक्त है इसलिए शुद्ध भक्त की पहचान केवल शुद्ध भक्त कर सकता है। इसलिए हमें भक्तों को क्या नहीं करना चाहिए जज करना नहीं चाहिए उनको भक्तों को जज नहीं करना चाहिए दूसरे भक्तों की स्थिति को। तो ऐसे जब श्रीवास ठाकुर ने देखा तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा ये जो भक्ति की भावना है ये शिवजी और ब्रह्मा भी चाहते हैं ऐसा आनंद अनुभव करना। तो चैतन्य महाप्रभु को श्रीवास ठाकुर ने कहा सबे मेले कठाई करे कीर्तन। तब श्रीवास ठाकुर कहते हैं कि हम सब मिलेंगे अभी एक एक स्थान और क्या शुरू करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तभी श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हमें अभी एक साथ मिलना है और कीर्तन करना है। ओपन इनविटेशन था श्रीवास आंगन में कीर्तन शुरू करने का श्रीवास ठाकुर के द्वारा। तो ऐसे महाप्रभु ऐसे प्रेम के भाव जो प्रकट कर रहे थे तो उस समय अद्वैत आचार्य के जो मनोभाव है वो बहुत गंभीर थे। और अद्वैत आचार्य के चरित्र को या कार्यकलापों को वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं सरलता से समझना बहुत ही कठिन है। और अद्वैत आचार्य जब घर में थे और इतना सब कुछ छोड़ा था नवद्वीप में एक भी दिन अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के घर में नहीं गए। गया से वो महाप्रभु वापस आए तब तक एक भी दिन नहीं गए बल्कि अद्वैत आचार्य ने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु ही सच्चिदानंद ही मेरे वास्तव में प्रभु है तो मेरे निकट खुद आएंगे ऐसा वो सोच रहे थे और आकर मेरे प्रति अपना स्वयं का जो भगवत भावना है उसको प्रकट करेंगे और मेरे बालों को पकड़कर खींचकर अपने चरणों में रखेंगे इस प्रकार से ये सोच रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है उन्होंने एक दिन सुबह सुबह अपने साथ में किसके लिया गदाधर को लिया गदाधर पंडित को लिया और चैतन्य महाप्रभु को तांबूल खाना बहुत अच्छा लगता है तो गदाधर पंडित को जब लिया वो एक साथ अद्वैत आचार्य के घर में गए तो वहां अद्वैत आचार्य को देखा शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं तुलसी और जल हम उनको अर्पित कर रहे हैं और बीच बीच में अपना हाथ ऊंचा करते हुए कह रहे हैं हरे हरे जोर से
हरी, हरी।
और जोर से
हरी, हरी।
तो अद्वैत आचार्य को हरी हरी कहते हुए जब देखा तो चैतन्य महाप्रभु एक ही चीज उनके साथ होती है क्या मूर्छित होना। जब तक वो अभी यहां से शुरू है मूर्छित होना हमेशा के लिए हर लीला में तो महाप्रभु जब मूर्छित हो गए और फिर ये जो अद्वैत आचार्य ने सोचा कि ये सही मौका है यही मेरे प्राणनाथ है चैतन्य महाप्रभु ये चोर कब से नवद्वीप में है और अभी मुझे इसकी चोरी करनी चाहिए और चोरी क्या करनी चाहिए इसको रिवील करना है कि ये कोई सर्वसाधारण बालक नहीं है युवक नहीं है ये साक्षात कौन है कृष्ण है। तो उन्होंने तुरंत ही महाप्रभु तो मूर्छित होकर गिर पड़े थे तुरंत सारा पूजा का सामग्री तो था ही लिए धूप अगरबत्ती पुष्प चावल सब कुछ करने लगे चंदन अर्पित करने लगे और बारंबार एक श्लोक का उच्चारण करने लगे विष्णु पुराण के, जिसका उच्चारण प्रहलाद महाराज ने किया था, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो प्रहलाद ये श्लोक बोलते थे भगवान नरसिंह की स्तुति हेतु। तो जब उन्होंने श्लोक बारंबार बोलना शुरू किया और अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे, उनके चरणों का एक प्रकार से अपने आंसुओं से अभिषेक कर डाला, और फिर गदाधर पंडित खड़े थे। गदाधर ने कहा, अद्वैत आचार्य आप इतने सीनियर आयु के भक्त हो, ये छोटे से बालक की ऐसी वैसी पूजा क्यों कर रहे हो? तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, ये कोई छोटा बालक नहीं है, एक दिन गदाधर तुम समझ जाओगे, कुछ ही दिनों में ये कौन है, साक्षात कृष्ण है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वापस अपनी मूर्छित अवस्था से उठते हैं, तो कहते हैं कि हे अद्वैत आचार्य, हे महाशय, आप मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि मेरा मन कृष्ण में नहीं लगता। अद्वैत आचार्य, आपके हृदय में तो कृष्ण सदा सर्वदा विराजमान है, आप सदैव कृष्ण की भावना से अभिभूत हो, और मेरा हृदय कृष्ण के अलावा बाकी सब वस्तुओं में आकृष्ट होता है, तो आप क्या करो, मेरे प्रति कृपा प्रदर्शन करो, ताकि मेरे हृदय में कृष्ण हमेशा निवास करेंगे। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे, हाँ ये नाटक कर रहा है, चतुराई दिखा रहा है, हाँ ये विनम्रता का भाव प्रकट करके, वास्तव में आप कौन हो, कृष्ण हो। तो अद्वैत आचार्य सोच रहे थे मन में कि मैंने तो जो चुराना था वो चुरा लिया, आपके चरण कमलों से आपकी जो कृपा है। फिर अद्वैत आचार्य ने उनको कहा कि हे निमाए, तुम सदैव क्या करो, इन भक्तों के संगति में, हमारे संग में रहो, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम का विचारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु फिर संकीर्तन करने लगे नवद्वीप में, और ये जब संकीर्तन जो लीला है चैतन्य महाप्रभु की बहुत विशद है, कई सारे ग्रंथों में अलग अलग कीर्तनों का चैतन्य महाप्रभु के वर्णन किया गया है, और सारे नवद्वीप वासी इस संकीर्तन लीला को देखकर या संकीर्तन के रंग को देखकर आनंदित होते थे। बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब इस जगत में प्रकट हुए थे, गौर पूर्णिमा जिसे कहते हैं, जिस दिन प्रकट हुए थे उसी दिन प्रकट होने के पूर्व ही हजारों हजारों लोग गंगा नदी में स्नान करने जा रहे थे और हरि हरि का उच्चारण कर रहे थे, हरि हरि महाप्रभु, इसलिए उनको गौर हरि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसे गौर हरि ने सबके मुख में हरि हरि शब्दों का उच्चारण करवाया, और जैसे वो बड़े हो गए, छोटे से बालक ही थे, तो जानबूझकर रोते थे। क्यों रोते थे? और वो इसलिए रोते थे कि सारे स्त्रियां जो उनके आसपास है, उन्होंने बहुत प्रयास किया इस बालक रोने से रुक जाए, लेकिन रुकता नहीं था। लेकिन सारी स्त्रियों ने बीच में हरि हरि का जब उच्चारण किया, बालक शांत हो गया, और जैसे ही स्त्रियां यह हरि हरि करना रुक जाती थी, कृष्ण नाम लेना, निमाई पंडित जोर से, निमाई छोटा बालक जोर से रोता था, पूरे दिन स्त्रियों को एंगेज रखा, कीर्तनीय सदा हरि। हाँ, महाप्रभु एक्सपर्ट है एंगेज करने में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे प्रेम प्रकाश या प्रेम के विकार प्रकट कर रहे थे नवद्वीप में, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि अनंत शेष मुश्किल है उनको वर्णन करना, कितने लक्षण महाप्रभु के शरीर में प्रेम के प्रकट हो रहे थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु आनंद से उनके आंखों से आंसू बहने लगते थे, कम कम भी होती थी शरीर में, और चैतन्य महाप्रभु का शरीर मक्खन से भी अधिक मुलायम हुआ हो जाता था। तो इतने सारे लक्षणों को भक्त लोग देखते थे और वो सोचते थे कि हम लोग वास्तव में धन्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के पिता है या यज्ञेश्वर है, संकीर्तन यज्ञेश्वर। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हरेक नवद्वीप वासी अपने सब चीजों को भूलकर समर्पित होना चाह रहा था, उनकी शरण ग्रहण करना चाह रहा था। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और अचानक कीर्तन के बीच में रो पड़े, तो सारे भक्त लोग उनके इर्द गिर्द आकर बैठ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास, और कुछ लोग तो उनके चरण कमलों से धूलि लेना शुरू करते हैं। और कीर्तन के बीच में चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, कोथा गेले पाई बसे मुरली वदन, बलिते बाड़े श्वास करे क्रंदन। उन्होंने कहा जाकर मेरे जो हृदय जिन्होंने चुरा लिया है कृष्ण ने, कहा जाकर मैं उनको प्राप्त करूं। कोथा गेले पाई बसे मुरली वदन, कहा जाने से मैं जो मुरली का वादन करते हैं ऐसे कृष्ण को मिलूंगा। और ऐसे बोलते बोलते जोर जोर से सांस लेने लगे और जोर जोर से रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या बताऊं हे डिवोटीज, मेरे हृदय में कितना बड़ा दुख भरा पड़ा है। तो महाप्रभु कहने लगे, प्रभु बोले मोरे से दुखे र अंतराय, पाए या वो हराए नो जीवन का नाय। वो कहते कि इतना अधिक दुख मेरे जीवन में है, कोई पूछ सकता है कि क्या दुख है? अभी हमारे पास कोई पूछे कि कितना दुख है तो हम हमारे जीवन में दुखों की तो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये दुख नहीं था। चैतन्य महाप्रभु के हृदय में दुख क्या था कि पाई यामो हरायनु जीवन कानाई, कानाई मीन्स कृष्णा। तो वो कहते कि कृष्ण को मैंने प्राप्त कर लिया था लेकिन अभी वो मेरे जीवन से क्या हो गए हैं, दूर चले गए। हरायनु उनको मैं अपने जीवन से खो चुका हूं। तो इस भावना से चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे और रोते रोते उनका जो कृष्ण के प्रति विरह की भावना है वो बढ़ गई और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या रहस्य है, क्यों इतना रो रहे हैं। तो डिवोटीज पूछते हैं, आप क्या करो, अपने कृष्ण विरह की जो व्याख्या है वो आप बताओ, क्यों इतना आपको विरह कृष्ण से महसूस हो रहा है? हमें तो कभी कृष्ण से विरह महसूस नहीं होता, आपको ही क्यों सर्वाधिक कृष्ण से इतना विरह महसूस हो रहा है? तो चैतन्य महाप्रभु चारों ओर देखने लगे और ढूंढने लगे अपने जो प्राणनाथ कृष्ण है। उन्होंने कहा, जब मैं गया था तो वहां मुझे कृष्ण एक प्रकार से प्राप्त हो गए थे, और वहां से जब मैं वापस आ रहा था, वापस आते आते मैं एक स्थान में आ गया जिसका नाम क्या था, कानाई नटशाला। क्या नाम था? कानाई नटशाला। तो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, कानाई नटशाला वो स्थान है जहां अभी भी अनंत सालों से एक विशेष कृष्ण के विग्रह है, शालिग्राम शिलाएं हैं और एक हिल के ऊपर भगवान वहां निवास करते हैं। अरे कनाई नटशाला नामक जो स्थान है ये श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के लिए बनाया था, और वास्तव में कृष्ण का एकांत संग लाभ करने हेतु श्रीमती राधिका ने ये कनाई नटशाला नाम जो स्थान है वो बनाया था। और वहां जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, महाप्रभु कहते मैं वहां गया और वहां एक छोटा सा हिल था उसके ऊपर मैं चढ़ते हुए वहां पहुंचा और मैंने एक अद्भुत चीज को देखा, और जब से मैंने उस चीज को देखा तब से मेरी ये दशा हो गई है। तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, अब मैं वो श्लोक पढ़ता हूं, कानाई नटशाला नामे एक ग्राम, गया है ते आसिते देखे लो सही स्थान। कानाई नटशाला एक स्थान है जहां मैं गया से वापस आया तो उस स्थान को मैंने देखा। तमल श्यामल एक बालक सुंदर, नव गुंजा सहित कुंतल मनोहर। उस स्थान में मैंने देखा तमाल वृक्ष के समान अंग कांति वाला एक श्याम सुंदर बालक या कृष्ण को देखा, जिन्होंने जिनके कानों में कुंतल थे और गुंजा नव गुंजा की जो माला है उन्होंने धारण किए थे। विचित्र मयूर पुच्छ शोभे तदुपरे, झलमल मणिगण लखित न पारे। और उनके सर के ऊपर जो मयूर पुच्छ है वो शोभा पा रहा था, और जो अलग अलग अलंकार है उनके गले में शोभायमान थे। हाते ते मोहन बासी परम सुंदर, चरण नुपुर शोभे अति मनोहर। महाप्रभु कहने लगे उस नवयुवक के हाथ में सुंदर बांसुरी थे और उन्होंने अलग अलग नील वर्ण के जो मणि है अपने शरीर में बाजूबंद आदि के रूप में धारण किए हुए थे। श्रीवस्त कौस्तुभ वक्षेश्वे मणिहार और जो कौस्तुभ मणि आदि है वो भी उनके वक्षस्थल में शोभायमान था। और ऐसे कृष्ण जिन्होंने पीताम्बर धारण किया हुआ था, मकर कुंडल से उनके कान सुशोभायमान थे, उनकी आंखें कमल के समान थे, ऐसे वो कृष्ण श्याम वर्ण बालक मेरे पास आता है। महाप्रभु ने क्या कहा, मेरे निकट आया, कैसे आया वो बालक, हंसते हुए आया, हंसते हंसते आमारा लिंगिया पलाइला कोन भीते, और हंसते हंसते आया और मेरा आलिंगन किया और आलिंगन करके चला गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये मेरे साथ हुआ कन्हैया नटशाला में। तो भक्तों ने जब महाप्रभु के मुख से ये वर्णन सुना तो उनको ऐसे लगा कि हमने भी साक्षात कृष्ण को देख लिया है। और फिर ऐसा सुनते कहते कहते चैतन्य महाप्रभु फिर से मूर्छित हो जाते और कहते कि कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए मेरे जो कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि यही कारण है आप मुझे देख रहे हो, इतने दिनों से मैं क्यों इतना रो रहा हूं, गिड़गिड़ा रहा हूं, कृष्ण के लिए पागल हो क्यों, क्योंकि कान्हाई नटशाला में कृष्ण मुझे मिले थे जहां उन्होंने मेरा आलिंगन किया था और मेरे जीवन से दूर चले गए। तो इस प्रकार से वो विरह प्रकट करते हैं। तो भक्त लोग कहते हैं कि हम तो बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि आप जैसे महान भक्त का संग हमें लाभ हो रहा है, तो हमें वैकुंठ की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके संग से वैकुंठ क्या श्रेष्ठ हो सकता है? भक्त लोग कहते कि नहीं, बल्कि वैकुंठ की प्राप्ति से अच्छा है कि हम हमारा जीवन सदैव आपके संग में बिताए। फिर उन भक्तों ने कहा कि हे चैतन्य, हे निमाय पंडित, अभी क्या करना चाहिए, हमें हमेशा कीर्तन करना चाहिए। फिर उन डिवोटीज ने कहा कि आप पूरे नवद्वीप के भक्तों के लीडर बन जाओ और हम आपके क्या बनेंगे, अनुयायी बनेंगे और आपके संग में निरंतर कृष्ण कीर्तन करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के लीडर होते हैं नवद्वीप में। और वो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ब्राह्मण का एक पुत्र है जिनकी आयु चैतन्य महाप्रभु की आयु 22 साल की थी जब वो गया से वापस आए थे, और 2 साल के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु फिर कीर्तन कंटिन्यू करते हैं और एक दिन जब अपने घर में थे तो गदाधर पंडित सोचते हैं कि मुझे निमाय को मिलने के लिए जाना चाहिए। तो गदाधर पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे और गदाधर पंडित को पता है कि चैतन्य महाप्रभु को क्या चीज अच्छी लगती है, उनको जो तांबूल है वो सबसे प्रिय था। गदाधर चाहे नदी के किनारे जहां भी मिले चैतन्य महाप्रभु को तांबूल खिलाया करते थे। तो एक दिन गदाधर पंडित अपने हाथ में तांबूल लेकर सची माता के घर या निमाय पंडित के घर जा रहे थे। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं एक दिन तांबूल लैया गदाधर हरिषे आइला सी प्रभु रघुचर। वो एक दिन तांबूल लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और गदाधर को देखकर निमाय पंडित कहते हैं एक प्रश्न पूछते हैं कोथा कृष्ण श्यामल पीतवासा, मतलब ये गदाधर आप बताओ जो कृष्ण जिन्होंने पीताम्बर धारण किया है ऐसे कृष्ण कहां चले गए। तो गदाधर पंडित को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दो, और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि जैसे उनका हृदय इतना दर्द से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है कि कृष्ण कहाँ है। तो गदाधर पंडित को समझ में नहीं आया कि क्या उत्तर दो। तो गदाधर पंडित ने कहा कि कृष्ण तो सदैव आपके हृदय में निवास करते हैं। चैतन्य निमाय पंडित ने जैसे ही उत्तर सुना तुरंत अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने नाखूनों से क्या फाड़ने लगे, अपनी छाती फाड़ने लगे कि गदाधर ने बोला है कृष्ण कहाँ है, तुम्हारे हृदय में है। तो खुद का हृदय छाती फाड़ने लगे तो गदाधर दौड़ते हैं और उनके दोनों हाथों को पकड़ते हैं और गदाधर कहते हैं कि हे निवाय, हे विश्वंभर, कृष्णा भी आने वाले हैं, तुम क्या करो, अभी रुको। तो ये सब हो रहा था, सची माता दूर से देख रहे थे। सची माता कहती है मेरा साहस नहीं होता अपने पुत्र के पास जाने का, लेकिन ये गदाधर कितना अच्छा बालक है, ये बड़ा सही रूप से समझाता है और जिसके द्वारा निमाय पंडित समझ पा रहे हैं। और फिर गदाधर को सची माता कहती है कि हे गदाधर, मेरे जो निमाय है उसको कभी भी दूर, उससे कभी भी आप दूर मत रहना, उसको छोड़कर सदैव क्या करो, उनके सन में ही रहो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो भी लीलाएं करते थे उनके सन में गदाधर पंडित होते थे। या संन्यास उन्होंने ग्रहण किया, वो जगन्नाथपुरी चले गए तो भी उनके साथ कौन गए थे, गदाधर पंडित भी थे। और उन्होंने सिर्फ संन्यास ग्रहण किया कटवा में जाकर, तब भी उनके संग में गदाधर पंडित थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन आदि शुरू करते हैं गया से आने के बाद अपने भक्तों के संग में। और फिर जो प्रमुख कीर्तन है, सबसे पहले एक तो उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया था अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन फिर बाद में सोचा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कीर्तन होना चाहिए, तो उन्होंने शुरुआत की अपने घर से ही, योग पीठ अपने घर में ही संध्या के समय में भक्तों को बुलाते थे और मुकुंद बहुत मधुर स्वर से कीर्तन गाया करते थे और चैतन्य महाप्रभु और सारे भक्त उच्च ध्वनि से उच्चारण करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब घर में ही कीर्तन कंटिन्यू कर रहे थे, तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने के बाद पूरी रात उनके घर में कीर्तन करते थे और सुबह उठकर गंगा स्नान आदि के लिए जाते थे। तो एक दिन कीर्तन के बाद जब वो निकल पड़े बाहर, बहुत सुंदर उन्होंने वस्त्र आदि धारण किए थे और बाहर जाते ही अलग अलग लोग देखने लगे कि ये तो बहुत रूपवान सुंदर नवयुवक है, और फिर सोचने लगे कि ये पूरे दिन करता क्या है, केवल नाचता है, गाता है, रोता है और दूसरों को भी रुलाता है। तो उन्होंने कहा कि ये निमाय एक दिन नवद्वीप के सारे लोगों को पागल कर देगा इसकी उदंडता के कारण। और फिर चैतन्य महाप्रभु इन सबके जो वाणी है उसको सुनते सुनते गंगा के किनारे जाते हैं अकेले। जब गंगा के किनारे पहुंचे उस दिन, तो दूर से उन्होंने देखा कि कुछ सफेद वर्ण की जो गायें हैं जल पीने के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे, अपनी पूछे ऊपर करते हुए हम्बा हम्बा का उच्चारण करते हुए आती है, जल पीती है। तो चैतन्य महाप्रभु दूर से देखते ही कहते हैं कि क्या, वो कुछ चिल्लाने लगते हैं चैतन्य महाप्रभु, वो चिल्लाते हैं कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। फिर से किसकी याद आई होगी उनको, कृष्ण की। गायों को देखकर किसकी याद आई, कृष्ण और वृंदावन की याद आई। बल्कि उस समय नवद्वीप में अधिकतर कीर्तन शुरू हुआ था श्रीवास ठाकुर के घर में। तो श्रीवास ठाकुर और जो भक्त लोग हैं वो कीर्तन करते थे पूरी रात्रि रात भर। तो जो नास्तिक लोग हैं वो बहुत सारे उनकी निंदा करते थे, वो कहते थे ये श्रीवास और उनके जो चारों भाई हैं ये एक दिन पूरे नवद्वीप का विनाश करेंगे, ये इन लोगों को रात्रि में नींद नहीं आती और पूरे रात्रि रात्रि चिल्लाते रहते हैं। क्या चिल्लाते हैं,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
उन्होंने कहा इन सबको एक साथ वात का रोग हो गया है, कृष्णा क्या धीरे से बोलने से क्या पुण्य प्राप्त नहीं होगा, रात्रि में जोर जोर से चिल्लाने से पुण्य प्राप्त हुआ होगा। उन्होंने कहा ये सारे लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ते बल्कि भगवान सोते हैं और ये लोग क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, भगवान को पुकारते हैं जोर जोर से, तो भगवान एक दिन गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे इनके चिल्लाने से, उनकी निद्रा भंग हो जाएगी और भगवान क्रोध से क्या करेंगे, पूरे नवद्वीप का विनाश कर डालेंगे। इस प्रकार से या ऐसे जो पाषंड या नास्तिक लोग थे वो सब चिल्ला रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, मैं आज राजा के दरबार में गया था, मुस्लिम शासक का शासन था वहां, वहां जब गया तो उसने कहा कि मैं आज दो नाव भेजूंगा जो सैनिकों से भरी होगी, और किस लिए, ये जो जो लोग कीर्तन करते हैं उनको पकड़ने के लिए और उनको दंड देने के लिए। और ये सब नास्तिक लोग कहने लगे, आने दो उस सैनिकों को, हम बताएंगे नाम, कौन कौन व्यक्ति कीर्तन में भाग लेता है, हाँ कौन कौन व्यक्ति मंदिर जाता है। तो वैसे ही सारे लोग कहने लगे कि हम उस श्रीवास, ये सारे निमाई के फॉलोवर्स और श्रीवास के भाई, इनको बांध कर उस राजा के पास पकड़ा लेंगे, राजा के सैनिकों को, फिर हम लोग हमेशा के लिए शांति से निद्रा ले सकते हैं। क्योंकि ये लोग रात्र में कीर्तन करते थे तो नवदीप के लोगों को कभी नींद नहीं आती थी, परेशान हुआ करते थे। जैसे भी जहां भी इस्कॉन टेम्पल होता है उसके आसपास के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। और आप देखो किसी भी इस्कॉन टेम्पल में जाओ, आसपास के लोग कोई भी डिवोटी नहीं है, वो 15-15 किलोमीटर में दूर दूर भक्त बनते हैं, वहां से वो यहाँ आते हैं। इस्कॉन इस सब कैलाश में जाओ, गढ़े में कोई डिवोटी नहीं है लोकल, यहाँ लोकल कोई डिवोटी नहीं है। चौपाटी मंदिर जाओ तो आसपास इतनी बिल्डिंग्स है, कोई डिवोटी नहीं है। मतलब किसी भी जगह जाओ आसपास डिवोटीज नहीं है, आसपास के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। किससे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। तो इस प्रकार से सब परेशान रहते हैं ये सब नास्तिक लोग, और वो सोचते कि हम ये निमाई ने सबको पागल कर दिया है और हम इन सबको भेज देंगे राजा के पास। तो ये जो भय था, श्रीवास ठाकुर बहुत सरल और उदार हृदय के थे। जब उन्होंने ये सुना कि राजा के सैनिक आने वाले पकड़ने के लिए, श्रीवास ठाकुर के हृदय में थोड़ा सा भय उत्पन्न हो गया। और जैसे भक्त के हृदय में भय उत्पन्न होता है तो सबसे पहले किसको पता चलता है, भगवान कृष्ण को। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला गौर चंद्र को कि श्रीवास ठाकुर के हृदय में अत्यधिक भय है, तो फिर श्रीवास ठाकुर का जो भय है उसका निवारण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु सज्जित होते हैं। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने ही ये व्यवस्था की थी कि उनके हृदय में क्या हो, भय आ जाए, ताकि मैं प्रकाश करके दिखाऊं कि मैं साक्षात कौन हूं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु फिर जब यहाँ गवों को देख रहे थे, गायों को देखते ही उनको लगा कि मैं कौन हूं, वास्तव में कृष्ण हूं। कृष्ण का स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु वहां से दौड़ते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए जाते तो श्रीवास ठाकुर के घर में पहुंचते हैं, और श्रीवास ठाकुर ने अपने घर का दरवाजा बंद किया था और अंदर में बैठकर बिल्कुल ध्यान मग्न समाधि की अवस्था में भगवान नरसिंह देव की पूजा कर रहे थे, इतने मग्न हो गए थे। और चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए जाते हैं श्रीवास ठाकुर के आंगन में, दरवाजे पर जोर जोर से लात मारते हैं, अरे श्रीवासा कहां सो रहे हो, उठो उठो, ऐसे चिल्लाने लगते लात मार मार के। कहते हैं तोर उच्च संकीर्तन नाडा रहूं करे, छाड़ी वैकुंठ आइनो सर्व परी करे। कहते तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो, तुम दो लोगों के कारण मैं वैकुंठ को छोड़कर यहाँ आया हूं। कौन दो लोग थे, अद्वैत आचार्य और दूसरे थे श्रीवास ठाकुर। क्योंकि अद्वैत आचार्य सदैव गंगा जल तुलसी के साथ कृष्ण शालिग्राम की पूजा करते थे, भगवान को आह्वान करते थे, और श्रीवास ठाकुर अपने परिवार के हर सदस्य के साथ, पत्नी बच्चे सेवक और अपने जो भाई आदि है उनके साथ हर रोज कीर्तन करते थे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो श्रीवास ठाकुर ने देखा कि साक्षात विश्वंबर चैतन्य महाप्रभु अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। महाप्रभु डांटने लगते हैं, कब से मैं चिल्ला रहा हूं, कब से मेरा प्राकट्य हुआ है, आप तक तुमने पहचाना नहीं मुझे, इतने साल बीत गए नवदीप में मुझे रहकर। तो चैतन्य महाप्रभु डांटने लगे, श्रीवास ठाकुर रोने लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते, श्रीवास मेरी स्तुति करो, मेरा गुणगान करो। तो श्रीवास ठाकुर, श्रीमद भागवतम में ब्रह्मा ने जब कृष्ण की स्तुति की थी, उन श्लोकों का उच्चारण करते हुए महाप्रभु की स्तुति करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सारे तुम्हारे सेवक परिवार के जो जन हैं, उन सबको बुलाओ, आओ उनको बुलाओ, वो मेरा दर्शन करने दो और मेरी पूजा करने दो। तो श्रीवास ठाकुर सबको बुलाते हैं, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनकी जो सेवक लोग हैं, सब आते चैतन्य महाप्रभु का पूजन आदि करते, उनका दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु हंसते हुए उन सबके सर पर अपने चरण कमल रखते हैं और महाप्रभु कहते कि आप सब लोग मांगो, कुछ वर मांगो मुझसे। तो कोई वर मांगने के लिए इच्छुक नहीं था, चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक वर दिया। हंसी बोले मोते चित्त हउ सभाकार। चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और कहा कि आप सबका जो चित्त है हमेशा हमेशा मुझ में लगा रहे, कृष्ण में लगा रहे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, हे श्रीवास मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय में एक विशेष भय है और उस भय को दूर करने के लिए मैं वास्तव में यहां प्रकट हुआ हूं। और तुम्हें इतना क्यों भयभीत होना है उस राजा के लिए? वास्तव में मैं जब तक उस राजा को प्रेरित नहीं करूंगा नौका भेजने के लिए, तब तक वो नवदीप में नौका सैनिकों के साथ भेज नहीं सकता। और गलती से यदि राजा स्वतंत्र होकर सैनिकों की नौका भेज भी दे तुम्हें पकड़ने के लिए और गंगा के किनारे आ जाए, तो मैं दौड़कर सबसे पहले नौका में जाकर कौन बैठूंगा? मैं बैठूंगा। कौन जिम्मेदारी लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते मैं बैठूंगा और वो बैठकर उस सैनिकों के साथ राजा के पास जाऊंगा और राजा मुझे देखकर विवल हो सकता है और यदि वो मुझे कुछ पूछे भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं उस राजा के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं उस राजा को कहूंगा कि हे राजा तुम सही रूप से जानो क्या सत्य है और क्या असत्य है। तुम्हारे जितने भी काजी मुल्ला सबको बुला लो यहां और अपने ग्रंथों के साथ बुलाओ और इसके अलावा हाथी घोड़े पशु सबको बुलाओ और आपके काजी मुल्लाओं को कहो कि आपका ये जो ग्रंथ है उसका उच्चारण करके पशु पक्षी हाथी इन सबको रुलाओ और यदि वो नहीं रुला सके तो मैं कहूंगा क्या अधिकार है फिर आपको ये संकीर्तन को रोकने का। चैतन्य महाप्रभु कहते फिर मैं उन्हें कहूंगा ये नहीं रुला पा रहे हैं तो फिर कौन रुलाएगा? मैं रुलाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं फिर एक पागल हाथी को पकड़ के लाऊंगा उस राजा के सामने और पागल हाथी ने बल्कि उसके जितने घोड़े हैं पशु हैं पक्षी हैं उन सबको सामने रखूंगा, राजा के जितने लोग हैं दरबार में सबको, और उन सबको कृष्ण कहते हुए रुलाऊंगा। क्या कहते हुए? जोर से और जोर से। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण कृष्ण कहते हुए मैं उन सबको रुलाऊंगा। तो अभी महाप्रभु को लगा ये तो लगेगा श्रीवास ठाकुर को जैसे कोई पियक्कड़ होता है ना, शराब पीकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। तो श्रीवास ठाकुर सोच सकता है कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कहा श्रीवास ऐसा मत सोचो कि मैं केवल बोल रहा हूं बल्कि मैं क्या करूंगा तुम्हारे सामने अभी दिखाऊंगा। तो वह एक छोटी सी उनकी भतीजी थी जिनका नाम था नारायणी। क्या नाम था?
नारायणी।
तो नारायणी बहुत ग्लोरियस लेडी थी। अब वो छोटी सी थी, जब वो बड़ी हो गई तो उन्होंने एक महान पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था श्रील वृंदावन दास ठाकुर। क्या नाम था? तो वृंदावन दास ठाकुर ने एक अमेजिंग ग्रंथ लिखा जिसका नाम था श्री चैतन्य भागवत। क्या नाम था? तो जितना भी हम दो तीन दिन से बोल रहे हैं कौन से ग्रंथ से बोल रहे हैं? चैतन्य भागवत से। तो ऐसे चैतन्य भागवत में स्वयं नारायणी जिनके पुत्र ने यह ग्रंथ लिखा है, जहां चैतन्य महाप्रभु ने देखा इन सब में ये छोटी सी बालिका है, बहुत ही छोटी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो सर्वभूत अंतर्यामी श्री गौरांग चांद आज्ञा कैला नारायणी कृष्ण बलिका। तो उसने महाप्रभु ने देखा वो छोटी सी बालिको बालिका को और कहा नारायणी कृष्ण बोलते हुए रो। क्या बोलते हुए? हाँ, तो हम जब रोते हैं तो अपने माँ बाप का नाम लेते हुए रोते हैं, रोते कि नहीं रोते? तो लेकिन यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं क्या बोलकर रो? कृष्ण। तो जैसे ही नारायणी को बोला, वो चार साल की थी, कितने साल की? वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चारे बत्सर से उन्मत्त चरे हा कृष्ण बलिया था ने नाही कसम में। वो चार साल की बालिका, महाप्रभु ने जैसे कहा नारायण कृष्ण बलिकांत, कान मीन्स नो, तो चार साल की बालिका उन्मत्त होकर कृष्ण के लिए रो पड़ी। अंग वही पड़े धारा पृथ्वी तले परिपूर्ण है लस्तल नया नेरा चले। इतनी अधिक विवल हो गई वो चार साल की बालिका कृष्ण के लिए जोर जोर से रोने लगी, उसके नयनों से आंसुओं की धारा बह रहे थे और ये देखकर चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे। हाँ कहा श्रीवास देखा अभी समझ में आया कि मैं वहां भी उन सबको रुला सकता हूं या नहीं। तो श्रीवास ठाकुर बहुत खुश हो गए। श्रीवास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु मेरे हृदय से सारा भय दूर हो गया है क्योंकि आपका नाम ही इतना शक्तिशाली है कि भय उससे भयभीत होता है, लेकिन स्वयं आप मेरे घर में उपस्थित हो तो मुझे किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी बाह्य अवस्था में फिर चतुर्भुज रूप धारण किया था। तुम चैतन्य महाप्रभु नॉर्मल अपने रूप में आते हैं और शांत हो जाते हैं और उस समय फिर चैतन्य महाप्रभु लज्जित होते हैं, लज्जित होकर वहां से चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन लीला श्रीवास ठाकुर के घर में शुरू करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम सब लोग क्यों अपनी रात्रि भी व्यर्थ गवाए, रात को भी हम सबको मिलकर क्या करना चाहिए?
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
तब महाप्रभु ने कहा कि हम सबको अपनी रात्रि भी नहीं गवानी चाहिए व्यर्थ, हम सब मिलकर रात्रि में भी कीर्तन करेंगे। तो फिर पहले तो दिन में करते ही थे, अभी रात्रि में कीर्तन करेंगे तो कौन सी जगह सुटेबल है? तो कौन सी जगह फाइनल के श्रीवास ठाकुर का ग्रह या आंगन, और उस कीर्तन में केवल जो शुद्ध भक्त है उन्हीं को ही प्रवेश था। वो कीर्तन मेला सोचो, ऐसा कीर्तन मेला जहां ओनली क्या थे? शुद्ध भक्त ही थे। और जब अंदर कीर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु पूरे रात्रि में और सारे दरवाजे किवाड़ बंद किए जाते थे चारों ओर, भक्त लोग नाचते थे गाते थे, कुछ लोगों को लगता था हमें भी प्रवेश मिलना चाहिए। तो यहां से देखते थे डोर का जो छोटा छोटा कुछ होल्स थे उसमें से आके देखते थे कि अरे क्या हो रहा है अंदर। कुछ नास्तिक कहते थे ये तो ड्रामा कर रहे मिलके शराब पीते होंगे और तो बहुत कुछ बोला है। हाँ तो वो सारे लीलाओं का वर्णन यदि चैतन्य महाप्रभु अलाउ करें तो हम फ्यूचर में कर सकते हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूअसली अपने जो संकीर्तन है भक्तों के सन में कंटिन्यू करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में हुआ था, जिस प्रकार से कृष्ण का प्राकट्य मथुरा में वसुदेव और देवकी के द्वारा, लेकिन उनकी अधिकतर लीला का संपादन ब्रज में होता है। जहां नंद महाराज और यशोदा है, उसी प्रकार से महाप्रभु का जन्म जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर में है, लेकिन उनकी लीला स्थली कौन सी थी? श्रीवास ठाकुर का आंगन, जहां श्रीवास ठाकुर और उनकी पत्नी थी मालती। हाँ, श्रीवास ठाकुर का जो आंगन है वो वास्तव में रास लीला स्थली के रूप में जाना जाता है और वह असंख्य लीलाएं हुई है। बल्कि महाप्रभु श्रीवास ठाकुर से इतना प्रेम करते थे, श्रीवास ठाकुर के संपर्क में जो भी व्यक्ति हो उस पर महाप्रभु कृपा करते थे। चैतन्य महाप्रभु पूरे रात्रि में कीर्तन करके जब सुबह एक दिन आ रहे थे उनके घर से वापस, बाहर आते ही वो निकल रहे थे तो सामने ही एक दर्जी की दुकान हुआ करती थी, टेलर, मुस्लिम टेलर था, और वो श्रीवास ठाकुर के कपड़े सिलाता था। क्या संबंध था उस व्यक्ति का श्रीवास ठाकुर से? कपड़े सिलाना। तो कपड़े सिलाता था, चैतन्य महाप्रभु उसके ऊपर भी अपनी कृपा का वर्षा करते हैं। महाप्रभु जब उनके घर से बाहर निकले, टेलर ने देखा, वहां से देखा तो टेलर कहने लगा, मैंने देखा। क्या बोला टेलर? आप लोगों ने कुछ देखा? प्रभुपाद को देख सकते हैं आप, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। तो वहां वो टेलर कहता है कि मैंने देखा। और क्या देखा था? वृंदावन ठाकुर कहते हैं उस टेलर ने देखा वो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर त्रिभंग ललित रूप में अपनी बांसुरी लिए हुए बाहर निकल रहे थे। और ऐसा कभी उस टेलर ने देखा नहीं था, इसलिए उसने कहा, क्या कहा? तब सोचो कितना अमेजिंग है, ऐसे महान भक्तों से संपर्क बनाए रखना, उनकी सेवा। तो ऐसे श्रीवास ठाकुर इतने प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु से, महाप्रभु के प्रति, उन महाप्रभु के बहुत प्रिय थे। मतलब चैतन्य महाप्रभु जब उनके घर में कीर्तन कंटिन्यूअसली रात्रि में करते थे तो महाप्रभु नहीं चाहते थे कि उनका, श्रीवास ठाकुर नहीं चाहते थे कि कोई भी कष्ट उन्हें मिले या कीर्तन रात्रि में बंद हो जाए, ऐसी कोई भी बाधा नहीं चाहते थे। एक दिन श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र है शरीर छोड़ता है घर में, हाँ बड़ा सा घर का, तो अंदर एक रूम है, उनका बेटा मर जाता है, उनकी पत्नी सारी स्त्री अंदर जोर जोर से रोती है और बाहर आंगन में क्या हो रहा था? हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे। तो अंदर तो जोर जोर से कीर्तन हो रहा था, कीर्तन की जो लहरें हैं वो उमड़ रहे थे, और श्रीवास ठाकुर को पता चला मेरे पुत्र ने देह त्यागा है। लेकिन श्रीवास ठाकुर बोले नहीं कुछ भी, उन्होंने अंदर स्त्रियों को जाकर डांटा, आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए कीर्तन में, हम अपने मोबाइल की आवाज बंद नहीं करते। हाँ, वहां किसकी आवाज बंद कर रहे हैं? वो अपने सारे स्त्रियों के, और घर में पुत्र मरा हुआ है। कहा कि चैतन्य महाप्रभु को कोई बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए इसके द्वारा। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे। फिर महाप्रभु ने सोचा मुझे आनंद नहीं आ रहा है, कुछ तो घटित हुआ है घर में। किसी भक्त ने कहा, स्त्रियों को तो श्रीवास ठाकुर ने बोला यदि आप रुकोगे नहीं तो आप, मैं अभी दौड़ते हुए जाऊंगा और गंगा में अपना देह त्यागूंगा। सोचो कितना प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के प्रति। तो ऐसे श्रीवास जब महाप्रभु को पता चला, महाप्रभु ने डिवोटीज को पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी भक्त ने कहा कि श्रीवास ठाकुर का जो पुत्र है उसने देह त्यागा है। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन को रोकते हैं, रोकर चैतन्य महाप्रभु उनके अंतपुर घर में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश कर वहां जाते देखते कि स्त्रियां रो रही है, बालक वहां लेटा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ उसको कहा, उठो, तो मरा हुआ जो बालक है वो उठ गया और उठते हुए महाप्रभु को प्रणाम करने लगा। उनको कहा कि आप ही वास्तव में सारे कर्मों के फल निर्धारित करने वाले हो, जितना समय मुझे इस घर में रहना था वो सारा मेरा समय पूरा हो गया है, और मुझे क्या करना है? यहां से जाना है। फिर से वो बालक उस अवस्था में लेट जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उसके अंतिम क्रिया आदि करते हैं उन सबके साथ। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते कि श्रीवास, आज से नित्यानंद प्रभु और मैं आपका क्या हो, हमेशा हमेशा के लिए पुत्र हो। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सोचा था कि कैसे संभव है इतना प्रेम, मतलब आप खुद का बालक शरीर त्यागे तो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं कि ऐसे जो इतना मुझसे प्रेम करते हैं उनको मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये फर्स्ट टाइम था महाप्रभु ने सोचा कि मुझे संन्यास लेना है, मतलब उस समय एक अपना डिजायर व्यक्त किया था कि मैं संन्यास लेने वाला हूं और संन्यास लेकर मुझे ऐसे भक्तों को छोड़ना पड़ेगा जो इतना मुझसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। तो महाप्रभु को बहुत दुख हो रहा था कि कैसे छोड़ूंगा मैं इन भक्तों को। इस प्रकार से वो जो श्रीवास आंगन है चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली है, और चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ये जो कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं और हर एक व्यक्ति को देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। पात्र पात्र विचार नाही नाही स्थान स्थान। महाप्रभु कहते हैं आपके पास पात्र हो या पात्र नहीं हो, मैं आपको कृष्ण प्रेम दूंगा। महाप्रभु ऐसे उदार राजा के समान है, जो राजा दान दे रहा है हर एक व्यक्ति को उतना जितना उसके पास पात्र हो। राजा ने अनाउंस किया कि जो जितना भी बड़ा बड़ा पात्र है आपके पास लेके आओ, मैं उतना भर के दान दूंगा। तो बहुत सारे लोग आते हैं लेकर, राजा उनको दान देता है, लेकिन एक व्यक्ति आता है वो कहता है कि राजा मेरे पास लेने के लिए कोई पात्र नहीं है। राजा उसको पात्र पकड़ाता है और दान भी देता है, वो चैतन्य महाप्रभु है। चाहे आप क्वालिफाइड हो अनक्वालिफाइड हो, लेकिन आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाते हो और जाकर उनकी शरण ग्रहण करने का मतलब है
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
शरण में जाते हो और शरण का मतलब है हरि नाम का उच्चारण करना। एक बार चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप वासियों को कहते हैं कि यदि सही में आप मुझसे प्रेम करते हो तो एक ही चीज करो। वो प्रेम कैसे प्रकट होगा मेरे प्रति आपका, कृष्ण के अलावा किसी और नाम का उच्चारण नहीं करना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इस प्रकार से चैतन्य चंद्र जिनको मायापुर चंद्र भी कहते हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु का ये जो लीला कथा है वो अमृत से भी अधिक मधुर है। गौरांगेरा मधुर वाणी जार करने, गौरांग महाप्रभु की मधुर लीला है जिसके कानों में प्रवेश करेगी वो व्यक्ति वास्तव में पूर्ण रूपेण शुद्ध हो सकता है। तो कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है, तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि कोई व्यक्ति गौर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव मनाता है बहुत उत्साह से, उसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के लिए जो प्रेम है स्वाभाविक रूप से उमड़ उठता है। तो हमारा मन लगे या न लगे तो भी हमें चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए आर तो उपाय ना है, कोई और उपाय नहीं है कलियुगा के जीवों के लिए। चैतन्य महाप्रभु जैसे दयालु अवतार की शरण ग्रहण करना और उनके नाम रूप गुण लीलाओं में अपना मन लगाने का प्रयास करना। इसलिए प्रभुपाद जब विदेशों में पहली बार उन्होंने गौर नेता की एक मंदिर में स्थापना की, सारे अमेरिकन हिप्पीज थे, इतना कुछ जानते नहीं थे भगवत भक्ति के बारे में, और प्रभुपाद विग्रह को स्थापित करके ऐसे व्यास आसन पर बैठे प्रवचन देने के लिए है, तो प्रभुपाद ने रोचनदास ठाकुर का गीत गाया और वो गीत की शुरुआत थी परम करुणा बहुद्विजना नेताय गौर चंद्र। तो प्रभुपाद ने जैसे ये दो शब्द बोले ना परम करुणा, तो बोलते ही चैतन्य प्रभुपाद के आंखों से आंसू आने लगे। प्रभुपाद ने कहा कि गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, इतने दूरस्थ स्थानों में स्वयं प्रकट हो गए हैं म्लेच्छ यवन नीच लोगों पर अपनी करुणा प्रदान करने के लिए। तो प्रभुपाद बहुत अधिक गौरविता है के प्रति आसक्त है, और कोई भी व्यक्ति गौरांग महाप्रभु के नाम चाहे एन के न प्रकारण लेता है वो सरलता से शुद्ध होने लगता है और उन्नत भक्तों का जो संग है लाभ कर पाता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ऐसे चैतन्य महा प्रभु की लीला कथा का हमें विराम देते हैं। तो आप सबका धन्यवाद, दो तीन दिन आपने प्रयास किया श्रवण करने का, हमें गीत गाएंगे और फिर उसका समापन करेंगे। हरे कृष्णा।
मन रे कहना गौर कथा,
Namaste। गौर सुंदर के गौर कथामृत के श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद के, श्री वृंदावन दास ठाकुर के, श्री श्री चैतन्य चरितामृत के, श्री श्री चैतन्य भागवत के, पतित पावन श्री प्रभुपाद के, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के, समवेत गौर भक्त वृंद के, हिताय गौर प्रेमानंदे के।